ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान में मदद के लिए तैयार है। कजान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बैठक के दौरान श्री मोदी ने दोहराया कि संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। इस बीच बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेनी नेतृत्व के साथ अपनी बातचीत के बारे में जानकारी दी और कहा कि भारत क्षेत्र में शांति लाने के लिए योगदान देने के लिए तैयार है। श्री मिस्त्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने रूसी सेना में शेष भारतीय नागरिकों से संबंधित मुद्दे पर भी चर्चा की।
With the support of the Russian side, a number of Indian nationals have in recent months been able to return to India. We understand that currently embassy is pursuing around 20 cases with the Russian side, and we very much hope that all of these individuals can be released.
विदेश सचिव ने कहा कि इन दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया और इस मुद्दे पर भारत रूस अंतर सरकारी सहयोग समूह की अगली बैठक मॉस्को में आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संपर्क सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने ब्रिक्स से संबंधित कई मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। श्री मिश्र ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे।
I can confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping on the sidelines of the BRICS summit.
इस बीच प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच संबंधों की समीक्षा और भविष्य में उसे और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर भी चर्चा की। भारत और सिंगापुर विशेष रूप से स्वचालन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री अंग एंग हन ने कल नई दिल्ली में छठी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों पक्ष साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। वे संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण पर द्विपक्षीय समझौते को अगले 5 वर्ष तक बढ़ाने पर भी राजी हुए हैं। सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एशिया की शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज है। इसी बीच सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। भारत और पाकिस्तान श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की अवधि को 5 साल आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस समझौते के विस्तार से पाकिस्तान जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों को आसानी होगी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के रास्ते भारत से हजारों सिख श्रद्धालु हर साल पाकिस्तान जाते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की और महाराष्ट्र में एक चरण में होने वाले चुनाव की अधिसूचना कल जारी हो गई है। नामांकन पत्र 29 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को होगी। वहीं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने यूनिटेक इंटरनेशनल रियल्टी फंड की 319 करोड़ रुपए से अधिक और सहाना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की 16 करोड़ रुपए की चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधान के तहत जब्त किया गया। बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान दाना शक्तिशाली होकर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके बृहस्पतिवार और शुक्रवार रात केंद्रपाड़ा में भितरकनिका और ओडिशा तट के भद्रक या बालासोर के बीच टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि गुरुवार सुबह तक इसके उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। तूफान के ओडिशा तट पर 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराने की आशंका है। वहीं सरकार ने 14 तटीय और पड़ोसी जिलों के सभी स्कूल कल से 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने सभी बंदरगाह के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि मछुआरों को कल से समुद्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मेजबान मलेशिया को 4-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत की ओर से अर्शदीप, शारदानंद तिवारी, रोहित और प्रियोवार्ता तलीम ने गोल किया। इस जीत के साथ भारत 9 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।